नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल, एनडीए से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन से के सुरेश मैदान में। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पेपर लीक को रोकने के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रूपये जुर्माने सहित कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। मौसम विभाग का अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का अनुमान और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से टेक्सास में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव कल होगा। भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला इस बार भी इस पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। वो पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को चुना है। दोनों उम्मीदवारों ने आज अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सरकार और विपक्षी दल लंबे समय की बातचीत के बावजूद इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ।
कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र भराया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे। वहां कांग्रेस के नेता ने कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट दें तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते।
संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष के चयन पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके सांसद टीआर बालू से मुलाकात की। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि उपाध्यक्ष के मुद्दे को उसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए।
ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वाधीनता के समय से बिना किसी प्रतिस्पर्धा के होता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब इस पद के लिए चुनाव हो रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब यह है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से अधिक वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना है कि ओम बिरला इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिए जाएंगे। वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर पूरी टक्कर देने को तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला राजस्थान से लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के के सुरेश केरल की मवेलिकरस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ लेने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। लोकसभा के पहले सत्र के आखिरी 2 दिनों में 5 सांसदों को छोड़कर सभी सांसदों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। श्री मोदी लोकसभा में सदन के नेता हैं। पहले दिन कल कुल 266 सांसदों ने शपथ ली थी और बाकी सांसदों ने आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा न केवल देश की विविधता के प्रतिनिधित्व के लिए बल्कि महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए भी उल्लेखनीय है। विभिन्न व्यवसायों क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से 74 महिला प्रतिनिधियों के साथ 18वीं लोकसभा एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र की भावना का प्रतिबिंब है। एक रिपोर्ट।
18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं, जो कि कानून बनाने में अपना अहम योगदान देंगी। सबसे बड़े दल बीजेपी में 30 महिला सांसद हैं, जबकि कांग्रेस में महिला सांसदों की संख्या 14 है। वहीं तृणमूल कांग्रेस में 11 महिला सांसद हैं, समाजवादी पार्टी में 4, डीएमके में 3 और जेडीयू और एलजेपीआर दोनों में 2-2 महिला सांसद हैं। जो महिलाएं 18वीं लोकसभा का हिस्सा हैं, वे अभिनय, कानून, व्यवसाय, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, कृषि और शिक्षा सहित विविध पेशेवर पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुकी ये महिला सांसद संसदीय बहस को समृद्ध बनाने और बेहतर भारत के लिए प्रगतिशील नीति निर्माण में योगदान देंगी। दुर्गेश के साथ सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज आगामी बजट पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, व्यय विभाग के सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिवों ने भाग लिया। एक अन्य बैठक में श्रीमती सीतारामन ने रोजगार और कौशल विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में आपातकाल का विरोध करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और देश के संविधान को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच या उसकी कार्यशैली में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा अध्यक्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित लोकतंत्र के काले दिन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी, उसकी ताकत के कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर के खड़ा है। एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, कोई देश का प्रमुख नेता बचा नहीं। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला जिनको जेल में 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कि इतना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से।
आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है।
इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलेपन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें।
आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं।
ये आकाशवाणी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को कल स्थगित कर दिया था और मामले की सुनवाई बुधवार को तय की थी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रूपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 42 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नीट 2024 परीक्षा घोटाले में एक और आरोपी को महाराष्ट्र में लातूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम संजय जाधव है। अब तक 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाहाबाद के जीबी पंत विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय नीट यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मामले में पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट अपेक्षा के अनुरूप होगी।
अभी जो गवर्नमेंट ने 5 बड़े एक्शन लिए हैं और उन बड़े एक्शन में एनटीए को ओवरऑल करने की जो एक प्रोसेस है उसके लिए कमिटी बनाई है, रेड एक्शन कमिटी, और वो कमिटी न केवल एनटीए में क्या चेंजेज होंगे उसको सजेस्ट करेगी बल्कि फ्यूचर में एग्जामिनेशन प्रोसेसेस में लीकेज की संभावना कैसे खत्म की जाए इसके लिए सुझाव देगी। डेटा प्रोटोकॉल सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे मिनिमाइज करेगी, तो ये सारे सजेशन वो कमिटी देगी। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी से वो फीडा से शुरू हुआ है, वो पकड़ा जाएगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान देश के उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 5 से 6 दिन तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बने रहने का भी अनुमान जताया है। बीडब्ल्यूएफ यूएस ओपन आज शाम टेक्सास के फोर्ट बर्थ कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्य ड्रॉ में शामिल खिलाड़ी कल अपने मुकाबले खेलेंगे। महिला डबल्स में भारत का नेतृत्व ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद करेंगी। वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गरागा और साई प्रतीक एकमात्र भारतीय जोड़ी है। प्रियांशु राजावत टेक्सास में भारतीय पुरुष सिंगल्स चुनौती का नेतृत्व करेंगे जबकि मालविका बंसोडे सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी। एशियाई खेलों के पदक विजेता घुड़सवार अनुष अग्रवाल पेरिस ओलंपिक की ड्रेसेस स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुष ने बेहतर औसत के कारण करीबी मुकाबले में श्रुति वोहरा को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल, एनडीए से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन से के सुरेश मैदान में। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पेपर लीक को रोकने के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रूपये जुर्माने सहित कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। मौसम विभाग का अगले पांच दिन के दौरान पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का अनुमान और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से टेक्सस में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।